यहाँ पे शुरू करना। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिहि अस्तफा अम्मा बाद, अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. کل ہم خلاصہ تفسیر پڑھ رہے تھے سورۃ المؤمنون کی ان آیات کی 63 سے 77 نمبر آیات سورۃ المؤمنون، اور اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. کہ اگر الحق یعنی دین حق جو ہے وہ شاید یہ آج اس بول بھی ہلکا ہی رہا ہے، اس وقت امید ہے بہتر ہو جائے گی. تو اگر دین حق یا اللہ رب العزت جس کا کہ یہ دین حق ہے، تو وہ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع کرنا شروع کر دیتا تو آسمانوں اور زمین میں فساد پھیل جاتا. ٹھیک ہے. بل اتیناہم بذکرہم، کوئی نہیں ہم نے پہنچائی ہے ان کو ان کی نصیحت. فہم عن ذکرہم معرضون، پس وہ اپنی نصیحت کی طرف دھیان نہیں کرتے، اس سے اعراض کرتے ہیں. یعنی جو ان کے لیے فائدے کی بات پہنچی تھی وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے لک اوے کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو اس کی تفسیر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ جیسا کہ قیامت میں تمام انسانوں میں گمراہی عام ہو جانے کے سبب اللہ تعالیٰ کا غضب بھی سب پر عام ہوگا، اور غضب الہی عام ہونے سے سب کی ہلاکت بھی عام ہوگی. یعنی یہ جو چھوٹی چھوٹی ہلاکتیں دنیا میں آتی رہی ہیں، قوم عاد و ثمود، قوم شعیب علیہ السلام، اور قوم لوط، اور قوم نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چھوٹی چھوٹی ہلاکتیں تھیں، اور یہ انسانوں کی یعنی گمراہی کی وجہ سے ہی تھیں. ٹھیک ہے کہ پوری پوری قوم جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتی تھی، لیکن وہ پھر بھی ایک علاقے تک ریسٹرکٹڈ ہوتا تھا، لمیٹڈ ہوتا تھا. جبکہ قیامت جب قریب آ جائے گی اور سارے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لیں گے، تو پھر صرف اور صرف کفر رہ جائے گا، اور کفر کے جو لوازمات ہیں، جو کفر کی وجہ سے جو اور بری باتیں پھیلتی ہیں، وہی ساری رہ جائیں گی. تو پھر جو ہے نا یہ گمراہی عام ہو جائے گی دنیا میں، ٹھیک ہے، یعنی ہر طرف پھیل جائے گی اور کوئی جگہ اس سے ایگزمپٹڈ نہیں رہے گی. تو پھر قیامت کا جو عذاب ہے نا، یہ بھی عام عذاب ہوگا، اور سب کی ہلاکت بھی عام ہوگی، یعنی سب کے اوپر آئے گی ہلاکت. اور اول تو کسی امر کا حق ہونا، آگے فرماتے ہیں کہ کسی بات کا سچا ہونا نا مقتضی ہے، یعنی تقاضا کرتا ہے. مقتضی کا مطلب تقاضا کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے وجوب قبول کو، گو نافع بھی نہ ہو. یعنی کوئی بات سچ ہے نا، تو بھائی سچ بات جو ہے اس سے بے شک آپ کو فائدہ نہیں بھی ہو رہا ہو، لیکن بات تو سچ ہے نا، تو اس سچ کو جو ہے وہ قبول کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے کہ ہاں بھائی ایسے ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، بے شک مجھے کوئی ڈائریکٹ فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن میں اس کو ڈینائی تو نہ کروں گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بھائی ہوا تھا ایسا، واقعی ایسا ہوا تھا، تو آپ اس کو قبول کر لیں. ٹھیک ہے، تو اگرچہ کہ وہ آپ کے لیے نافع یعنی فائدہ مند نہ بھی ہو، پھر بھی سچ کا تو تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو مان لیا جائے. ٹھیک ہے، اور اس کا قبول نہ کرنا خود عیب ہے. यानी कोई शख्स जो है वो सच को कबूल ना करे, तो इसका मतलब है कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन, कुछ ऐब है उसके अंदर, उसकी अकल में कुछ खराबी है कि एक सच्ची बात है उसको वो नहीं मान रहा, ठीक है। मगर इन लोगों में, यानी ये जो नबी अलैहिस्सलाम को झुठलाने वाले कुफार थे, इन लोगों में सिर्फ यही एक ऐब नहीं कि हक से कराहियत हो, ठीक है, सच्ची बात को नापसंद करते हैं, सिर्फ यही एक मसला नहीं, बल्कि इससे बढ़कर दूसरा ऐब और भी है कि हक का इत्तेबा जो उन्हीं के नफे का सामान है उससे दूर भागते हैं। यानी इनको जो सच बात बताई जा रही है ये इनके लिए इररेलीवेंट भी नहीं है, बल्कि इनके लिए रेलिवेंट है, इनके लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात है, नुकसान से बचाने वाली बात है। तो ये तो ऐसे सच से दूर भाग रहे हैं जो इनके लिए डायरेक्टली फायदेमंद है। एक होता है कि जो कि आपको डायरेक्टली इफेक्ट ना करती हो, दूसरे काम के लिए फायदेमंद हो, तो भाई ठीक है, आप उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं करते, तो चलो भाई ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। इन लोगों में तो डबल ऐप था, ठीक है। तो यानी इस तरीके से हजरत ने इस बात की, इस आयत की तफसीर फरमाई है, ठीक है। हमने तो पहुंचा दी उनको उनकी नसीहत, बेजिक्र हिम, उनकी फायदे वाली चीज, यहाँ पे जिक्र से मुराद जो है वो खैर ख्वाही वाली बात है, नसीहत। नसीहत का मतलब क्या होता है? खैर ख्वाही वाली बात, गुड काउंसलिंग, वेल विशिंग, ठीक है। तो हमने, यानी हमने तो पहुंचा दी है उन तक उनकी गुड काउंसिल, उनके बेहतरीन फायदे वाली बात, फहुम अन जिक्र हिम, लेकिन ये लोग जो हैं वो अपने फायदे वाली बात से मोड़, अजीब लोग हैं, फायदे वाली बात से एराज कर रहे हैं, ठीक है। अब जाहिर है इसके, कुरान चूंकि किताब हिदायत है, किताबे कहानी नहीं है, किस्से कहानी नहीं है, तो अब उन लोगों के किस्से पढ़ करके हम जो है वो उनको बुरा भला कह करके, या दिल में उनके बारे में बुरा सोच करके, कितने बेवकूफ लोग थे, कितने बुरे लोग थे, कितने बेवकूफ, यानी उन्होंने अपना नुकसान कर लिया, और हम आगे बढ़ जाए, ये तो एटीट्यूड होता है एक किस्से कहानी वाली किताब के साथ, ठीक है ना, नॉवेल के साथ, डाइजेस्ट के साथ ये एटीट्यूड चल जाता है। लेकिन कुरान तो नॉवेल और डाइजेस्ट नहीं है ना, कुरान तो किताब हिदायत है, यानी हमारी, मेरी हिदायत के लिए, राइट। जो मैं पढ़ रहा हूँ कुरान, तो मेरी हिदायत के लिए, तो अब इसमें मेरी हिदायत क्या है भाई? मैं ये सोचूं कि मैं भी तो यही नहीं करता कहीं, कि मेरे नफे की बात कोई मुझसे करता है और मैं जो हूं ना वो उसको, उससे एराज करता हूँ, उससे पहलू तही करता हूँ, उसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मुझ में और उनमें भी फर्क ना हुआ, फिर ये सिफत जो है वो मेरे और उनमें कॉमन है, ठीक है ना। अब इस तरीके से सोचेंगे तो शायद जो है वो अपने अपने आप को बदलने की कुछ तकाजा पैदा हो जाए अपने अंदर, कि भी मैं अपने आप को बदल लूं, वरना मेरा कहीं, देखें कल बात हुई थी ना, तो जैसा मबदा होगा वैसा ही माद होगा, यानी जैसी इब्तदाई हालत होगी ना वैसे ही जो है अंजाम भी होगा। तो अब उनका अंजाम जो है वो अल्लाह ताला की नाराजगी है ना, तो भाई क्यों? क्योंकि उनका मबदा खराब था। अब अगर मेरा मबदा भी उनके मबदा जैसा हुआ, यानी मेरा हाल इस दुनिया में भी वही हुआ जैसा उनका हाल है, तो फिर अंजाम भी तो एक हो सकता है ना, जैसा उनका अंजाम है वैसे ही मेरा अंजाम ना हो जाए। ये बात एक ईमान वाले को थरथरा देती है, परेशान कर देती है, और वो फिर अपनी इस्लाह की फिक्र करना शुरू हो जाता है, लग जाता है अपनी इस्लाह के अंदर, ठीक है। लेकिन इस तरीके से सोचेगा तभी ये फिक्र पैदा होगी, वरना कोई बस गुजर जाएंगे इसके ऊपर से भी उसी तरीके से जैसे गुजरते रहे। तो आगे फिर फरमाते हैं कि अम तस अलहुम खरजन फखराज रब्बी का खैर वह हुआ खैर राजकीन, ठीक है, कि आप इनसे कुछ आमदनी चाहते हैं। यहाँ पर खिराज का तर्जुमा हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने आमदनी से, यानी सैलरी, तनख्वाह, आमदनी चाहते हैं आप इनसे, तो ये भी गलत है, क्योंकि जब आप जानते हैं अम तस अलहुम खर्जन, क्या आप इनसे सवाल करते हैं किसी खर्च का, ठीक है, फखराज रब्बी का खैर, ठीक है, कि आमदनी तो आपके रब की सबसे बेहतर है और वो सब देने वालों से अच्छा है, ठीक है ना, यानी वह हुआ खैर राज़िकीन, सबसे ज्यादा अच्छा रिस्क देने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों से क्यों मांगते हैं, ठीक है। अब ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने जो ये तफसीरन लिखा है ना कि आप लोगों से क्यों मांगते हैं, तो इसका मफहूम जो है, जाहिर है नबी अलैहिस्सलाम कोई लोगों से मांगते तो नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर समझाना मकसूद हो सकता है कि भाई जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अम तसअलुहुम अजरन, क्या आप लोगों से मांगते हैं, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम तो लोगों से मांगते नहीं थे, तो अल्लाह ताला जो है वो इस तरीके से फरमा रहे हैं कि इन लोगों को इस, यानी आपसे क्यों मुसीबत है, जैसे कि तर्जुमे के दौरान हम भी बात कर चुके हैं कि इन लोगों को आपसे क्यों मुसीबत है, आप तो दरअसल आप तो इनसे कुछ मांगते नहीं है, आप तो उनसे कुछ खराज, कोई तनख्वाह, कोई सैलरी नहीं मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने भी अल्फाज बजाहिर हमें ऐसे लगते हैं कि जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम के कोई कोई तंबीह की जा रही है, कोई जरह की जा रही है कि आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, नऊज़ बिल्ला, आप ये गलत काम क्यों कर रहे हैं लोगों से मांगने वाला, ठीक है। लेकिन चूंकि तारीख गवाह है इसके ऊपर कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा काम किया ही नहीं, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने जो है ना उनके इन अल्फाज को भी ऐसे ही समझा जाएगा कि कोई जरा जरा जराहन नहीं पूछ रहे कि भाई आप क्यों मांगते हैं, आपको ऐसे नहीं मांगना चाहिए, ठीक है। बहरहाल ये थोड़ा सा इस जुमले के अंदर जो है वो एक समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस जुमले को इस फकीर के लिए भी, लेकिन यकीनन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो है उसी माने में इसको इसको कह रहे हैं, ठीक है। क्यों गोया के आप मांगते को थोड़ी है, तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है आपसे, ठीक। और खुलासा उनकी हालत का ये है कि आप तो उनके सीधे रास्ते की तरफ, ठीक है, व इन्नका लतदउहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, ठीक है ना, और बेशक आप तो बुलाते हैं उनको सिराते मुस्तकीम की तरफ, ठीक है। देखें नबी अलैहिस्सलाम क्या करते थे, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की जॉब क्या थी, नबी अलैहिस्सलाम की नौकरी क्या थी, नबी अलैहिस्सलाम का जरिया मुआश क्या था, नौकरी के लिए और जॉब के लिए, राइट। जरिया मुआश का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है ना, मुआश का मतलब होता है कि आमदनी, ठीक है ना, कि आपके जो है वो जिंदगी का गुजर बुसर, गुजर बसर, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सॉरी गुजर बसर का जरिया क्या था, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जॉब क्या थी, इन अदर वर्ड्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी क्या थी, ठीक है ना। वो नौकरी क्या थी, तदउहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, ठीक है, बुलाते थे लोगों को सिरात मुस्तकीम की तरफ, ठीक है। तो सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाने का क्या तरीका होता है, चलिए ये आप बताएं, सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाने के क्या क्या तरीके या क्या क्या इसके अंदर डिटेल हो सकती है किसी को सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाना, जी ये है सवाल क्लास वालों से और वालियों से। जी नबी अलैहिस्सलाम की ये जॉब थी ना, ठीक है, तो इस जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखें तो उसमें क्या क्या आप शामिल कर सकते हैं। अल्लाह की बताई हुए अहकाम लोगों तक पहुंचाना, ओके, कैसे, कैसे पहुंचाते हैं, अपने बेहतरीन इखलाक के जरिए से, यानी नबी अलैहिस्सलाम जो है वो प्यार से लोगों से बात करते थे, और नबी अलैहिस्सलाम जो है वो एटिकेट्स, आदाब, और तो लोगों तक जो है वो फिर बात पहुंच जाती थी खुद ब खुद अपने बेहतरीन इखलाक के जरिए। अच्छा, अपनी जिंदगी से अमली मॉडल देना, नबी अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी से अमली मॉडल देते, अच्छा, तो इससे जो है ना वो तदउहुम इला सिरात मुस्तकीम, अच्छा, बताना कि एक अल्लाह है उसकी इबादत करनी है, तो ये नबी अलैहिस्सलाम की जॉब डिस्क्रिप्शन थी कि लोगों को बताते थे कि एक अल्लाह है और उसकी इबादत करनी, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की तालीम, दावत इस्लाम देना, अच्छा, ये अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की तालीम देते थे। ठीक है, ये बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। वैसे एक मर्दों की तरफ अभी हम आ नहीं रहे, वहां पे बड़े अच्छे अच्छे जवाब आए हुए हैं, तो खवातीन की तभी हम जवाब पढ़ रहे थे। तो उन्होंने लिखा अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की तालीम देते थे। तालीम देते थे कि क्या मतलब हुआ, कि लोगों को बताते थे कि अमर बिल मारूफ करो और नहीं अनिल मुनकर करो, राइट, खुद नहीं करते थे। अमर बिल मारूफ खुद नहीं करते थे, नहीं अनिल मुनकर खुद नहीं करते थे, राइट। ऊपर जो किसी ने जवाब दिया था ना, अपनी जिंदगी से अमली मॉडल देते थे, ठीक है ना। तो अगर हम ये कहें कि वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की तालीम देते थे, तो ये अमली मॉडल तो ना हुआ, ये तो थ्योरेटिकल मॉडल हुआ, राइट। थ्योरेटिकल मॉडल हुआ ना, कि भाई आप बयान कर रहे हैं, बयान में आपने कहा लोगों अमर बिल मारूफ किया करो और लोगों नहीं अनिल मुनकर किया करो, खुद नहीं करके दिखाया, राइट। किसी को जो है वो नेकी का हुक्म करना और किसी को जो है वो बुराई से रोकना, ये खुद करके दिखाना। नबी अलैहिस्सलाम खुद भी करते थे कि नहीं करते थे, या सिर्फ बयान किया करते थे? ठीक है, डरा के और खुशखबरी सुना के अल्लाह ताला की तरफ बुलाते थे, ठीक है, और अल्लाह ताला से डरते भी थे, ठीक है ना। खुशखबरी सुनाते नहीं थे, बल्कि अल्लाह ताला के साथ बेहतरीन उम्मीद खुद रखते भी थे, और ऐसा एटीट्यूड रखते थे कि जो कि उम्मीद वाला एटीट्यूड भी हो अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है ना, और डर वाला एटीट्यूड भी हो अपनी जिंदगी के अंदर, अपने आप को एज अ मॉडल। तो माशाल्लाह, ये तो बहुत माशाल्लाह फिलोसॉफिकल और इंटेलेक्चुअल किस्म के जवाब आए हैं, ठीक है ना। अब आया है इल्मी जवाब खवातीन की तरफ से भी, ठीक है, जो कि मर्दों की तरफ से माशाल्लाह पहले से आया हुआ था, कि जी नबी अलैहिस्सलाम की जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान मजीद में खुद जा बजा बता दी है कि नबी अलैहिस्सलाम क्या किया करते थे, क्यों भेजा है हमने इस प्रॉफिट को, इस नबी को, ठीक है ना। फरमाते हैं यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, ठीक है ना। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के अल्फाज हैं, का कलाम है, कि मेरा नबी जो है वो क्या करने के लिए दुनिया में आया है। तिलावत करते हैं इनके ऊपर अपनी आयात, मेरी आयात, अल्लाह की आयात तिलावत करके, ये हो गए अहकाम इलाहिया, ये हो गई जो अल्लाह ताला की बताई हुई वईदें हैं और जो अल्लाह ताला की बताई हुई नवीदें हैं, ये सब आयात कुरान के अंदर आ जाती हैं। तो उनकी तिलावत करके लोगों को सुनाते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद युज़क्कीहिम, युज़क्कीहिम का क्या मतलब है, हुक्म भी करते हैं कि तुम ये करो, नमाज पढ़ो, जकात दो। ये जकात दो क्या है, जकात दो से क्या होता है, माल का तज़किया हो जाता है, माल पहले नजिस होता है, अब जकात का, जब नबी अलैहिस्सलाम फरमाए तुम जकात दो, तो जब बंदा जकात देगा उसका माल पाक हो जाएगा, ठीक है ना। तो हुक्म कर रहे हैं, हुक्म करने से तज़किया हो रहा है। अच्छा, सिर्फ हुक्म, पॉजिटिव हुक्म करने से तज़किया नहीं होता, बल्कि कभी नेगेटिव हुक्म भी करना पड़ता है, फॉरबिड भी करना पड़ता है, ये मत करो, ये मत करो, यानी झूठ मत बोलो ताकि तुम्हारा तज़किया हो जाए, धोखा मत दो ताकि तुम्हारा तज़किया हो जाए, जुल्म मत करो ताकि तुम्हारा तज़किया हो जाए, क्योंकि तुम जुल्म करोगे तुम अपनी रूह को नजिस कर रहे होगे, तुम अपनी रूह को जो है वो बर्बाद कर रहे होगे, बीमार कर रहे होगे, तो जुल्म मत करो ताकि तुम्हारी रूह बर्बाद और बीमार होने से बच जाए, ठीक है ना। तो तज़किया करते थे नबी अलैहिस्सलाम लोगों का, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम देते थे, कि किताब के अंदर यानी अल किताब कुरान मजीद, इसके अंदर अल्लाह ताला जो है वो ये सारी बातें बता रहे हैं, इनका मतलब क्या है, इनका मानी क्या है। वल हिक्मा, और हिकमत क्या चीज होती है, कि नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नतें थी ना, सुन्नतें, कोई भी काम करने का तरीका जो नबी अलैहिस्सलाम का था वो हिकमत वाला तरीका था। हिकमत को हम आसान अपनी इंग्लू लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश प्लस उर्दू वाली जो हमारी लैंग्वेज है, उसमें हम कह सकते हैं कि हाउ टू मैक्स समथिंग, किसी चीज से मैक्सिमम बेनिफिट, किसी अमल के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम फायदा, सबसे ज्यादा नफा कैसे हासिल किया जा सकता है, इसको हिकमत कहते हैं। एक जुमला कहे बंदा, उस एक जुमले से सबसे ज्यादा फायदा हासिल कर ले, सबसे ज्यादा मकसद हासिल कर ले एक जुमला कह करके, वो एक जुमला हिकमत वाला जुमला कहलाएगा। ठीक है, तो जुबान से, जुबान में हिकमत होती है, इंसान के देखने में हिकमत होती है, इंसान के सुनने में हिकमत होती है, इंसान के अमल में हिकमत होती है। ये सारी हिकमतें हमें कहां से मिलती हैं? नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम की सुन्नतों से मिलती हैं। ठीक है, अब ये जो आपके सामने इस आजिज फकीर ने नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम के चार बेअसत के मकासद यानी जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं कुरान मजीद से, ठीक है ना, कुरान मजीद की आयात है ना ये, चार पांच जगहों पर तो आप अल्लाह ताला ने फरमाया है इस तरीके से इनको, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो चार काम हैं, ठीक है ना, तो अब ये चार काम जो हैं वो करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम सलाम ये नींद में करते थे जी, नबी अलैहिस्सलाम सलाम नींद में काम करते थे कि जी जो सोने का टाइम होता है रात के वक्त, जब सब लोग सो जाते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम भी सो जाते हैं, और उस टाइम पर जो है वो यतलु अलैहिम आयाती भी हो जाता है, और युज़कीहिम का काम भी हो जाता है, और युअल्लिमुहुमुल किताब का काम भी हो जाता है, और हिकमत का काम भी हो जाता है ना, नौम के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। जैसे कुछ लोग माशाल्लाह जब सोते हैं तो ऐसे ऐसे ख्वाब देखते हैं, कभी किसी को ज्यारतें हो रही होती हैं, कभी किसी को कुछ हो रहा होता है, और उसी में ना उनका सुलूक तय हो जाता है, नौमी सुलूक कहते हैं इसको, उनके दर्जात जो है वो बुलंद हो जाते हैं, वो अल्लाह के मुकर्रब बन जाते हैं, ऐसे ऐसे ख्वाब आते हैं उनको माशाल्लाह, ठीक है ना, तो ख्वाब में ही उनके सारे दर्जात तय हो जाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम के भी क्या सारे काम जो है वो ख्वाब में हो जाते थे? कब होते थे भाई ये काम? अच्छा, आम इंसान जो है उम्मती के पास 24 घंटे हैं, नबी अलैहिस्सलाम सलाम के पास अल्लाह ताला ने 48 आवर्स दिए हुए थे, कि 24 घंटे जो हैं वो तो वो उम्मतियों जैसा जैसी जैसे काम करें, और बाकी जो 24 घंटे हैं उनके अंदर जो है वो नबी वाला काम करें, राइट। नबी अलैहिस्सलाम सलाम ऐसे करते थे। कब करते थे ये सारा काम जी? कब करते थे? जागने के वक्त में करते थे ना, जब जागते थे तो उस वक्त ये चारों काम करते थे, ठीक है ना, क्योंकि ये चारों काम जो है वो कोई अकेले बैठ के करने वाले तो है भी नहीं, कि भाई दूसरे लोग सो रहे हैं रात के वक्त, तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम जाग कर जो है वो मुसल्ले पे बैठ के ये चारों काम कर लें, मुसल्ले पे बैठ के ये चारों काम हो जाएंगे, यत्रु अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये मुसल्ले पे बैठ के काम हो जाएंगे, नहीं हो सकते ये मुसल्ले के ऊपर, क्यों? इसलिए कि ये तो दूसरे लोगों के साथ करने के काम है ना, दूसरों को इल्म पढ़ाना है, दूसरों को आयात सिखानी है, दूसरों का तस्किया करना है, तो भाई आप अपने मुसल्ले पे बैठ के ये काम कैसे कर सकते हैं? ये काम तो उस वक्त करना होगा जब दूसरे लोग भी जागे हुए हो, जब दूसरे लोग भी अटेंटिव हो, उस वक्त ये काम कर सकते हैं ना। कहने का मकसद क्या है, ये सारी बातें ये फकीर क्यों कर रहा है? उसकी वजह यह है कि जो हमारे माशाल्लाह बहुत ज्यादा दीनदार तबका जो है ना, बहुत ज्यादा दीनदार, हम दुनियादारों की बात ही नहीं कर रहे, राइट। मटेरियलिस्ट जो है, जो शराब कबाब इसके अंदर पड़े हुए, उनकी तो छोड़ देना बात, हम बहुत दीनदार लोग, बहुत नमाजी, नाउज़ुबिल्लाह, नमाजी के साथ कबाबी का लफ्ज निकल रहा है मुझसे, राइट, नमाजी परहेजगार और दाढ़ी रखने वाले और सब कुछ करने वाले, राइट। वो कभी सवाल करते हैं कि उलमा से, मशाइख से क्या सवाल करते हैं कि आप कुछ करते भी हैं, राइट, क्या सवाल करते हैं कि आप करते क्या हैं, ये बताएं, यानी आपकी नौकरी क्या है, आपकी जॉब क्या है, राइट, आपका गुजारा कैसे चलता है, राइट, आप करते क्या हैं, ये बताएं ना, आप करते क्या हैं, ठीक है ना भाई। तो अब इस सवाल का क्या जवाब होगा, आप करते क्या हैं, राइट, आप कुछ करते भी हैं? ये सवाल होता है मशायख से, उलमाए कराम से। ठीक है, तो भाई इसका तो एक ही जवाब बस दिल में आता है कि भाई यही सवाल जो है ना, आप जाके अल्लाह के नबी से पूछ लीजिएगा कि अल्लाह के नबी आप करते क्या हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर काबू पा करके उलमा मशायख जो है ना, ये जवाब देते नहीं है, वरना फिर उनके ईमान का मसला ना पड़ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो जिस तरीके से उलमा मशायख के ऊपर एतराज करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान जो है ना वो उनके दिल में नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर भी एतराज डाल दे कि नबी अलैहिस्सलाम करते क्या थे, नऊज़ बिल्ला, तो फिर तो इनका ईमान ही खत्म हो जाएगा ना फिर, ठीक है। लेकिन सोचने की बात है ना कि ये जो काम है, यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ये कब करेगा बंदा? ये इसी टाइम में करेगा ना जिस टाइम के अंदर लोग दफ्तर जाते हैं, जिस टाइम के अंदर लोग जो है वो दुकान पे बैठते हैं, जिस टाइम के अंदर खवातीन जो हैं वो घरों के अंदर काम कर रही होती हैं, राइट। तो हर एक का एक काम है, हर एक की एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जो दीन का काम करने वाले हैं उनकी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, उनकी कोई जॉब ही नहीं है। इसी वजह से जो है ना वो हमारे जहन के अंदर दीन का काम का क्या क्या शक्ल बन गई है, दीन का काम हमारा जो है वो किन चीजों में मुकय्यद हो गया है, ये चले आप बताएं। हमारे जो जहन में तस्वुर है दीन का काम, अल्लाह रहम करे, बड़ी बादल गरज रहे, दीन का काम हमारे नजर में इस दौर इस जमाने में किन चीजों के अंदर कैद हुआ हुआ है, ये आप बताएंगे जी। व्हाट हाउ डू यू डिफाइन दीन का काम? मौलवी साहब का काम बताएं, मौलवी साहब क्या करते हैं? इबादात और आमाल, फजाइल? नहीं, मैं दीन के काम की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा कि इंसान अपनी जात में क्या काम कर रहा है। दीन का काम से मतलब दूसरों के लिए, ठीक है ना। दीन का काम का लफ्ज इस्तेमाल होता है दूसरों के लिए, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मौलवी साहब क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चलें ये इस तरह से जवाब दें। दीन की हिफाजत, भाई मैं कह रहा हूं सवाल को समझा करें पहले, आज के दौर में हमारे जहन में क्या नजरिया बना हुआ है दीनी सर्विस का जी। ये जवाब हुआ नमाज पढ़ाना, कुरान सिखाना, यानी कारी साहब, ठीक है ना, कारी साहब वाला जो काम होता है ना, बच्चों को कुरान पढ़ाना, ये है दीन का काम। नमाज पढ़ाना, जो इमाम साहब जो है मस्जिद में जाके नमाज पढ़ा के आ जाते हैं, है ना, एंटर होते हैं नमाज के टाइम से पहले, नमाज का टाइम खत्म हुआ वहां से वापस चले गए, ठीक है ना। इमामत करना, कुरान पढ़ाना, नमाज जनाजा पढ़ाना, है ना भाई, मर जाते हैं तो उस वक्त भी मौलवी साहब भी बुलाते हैं नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। निकाह पढ़ाना, हाँ निकाह पढ़वाने के लिए भी मौलवी साहब को बुलाते हैं, ठीक है ना। और जनाजा, हाँ जुम्मा पढ़ाना, जुम्मा पढ़ाना नमाज पढ़ाने के अंदर आ जाता है। मसाइल बताना, हाँ थोड़ा सा जो जरा दीनदार बन जाते हैं तो वो फिर मसाइल भी पूछते हैं, ओ मैंने जो है वो छालियां खा ली थी तो मेरा जो है वो वजू टूटा कि नहीं टूटा, ठीक है ना। और वो जो है वो मैं सजदे सहव करना भूल गई थी तो अब मेरी नमाज हुई कि नहीं हुई, मुझे दोहरानी पड़ेगी कि नहीं पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना, या हैज और निफास के कुछ मसाइल पूछ लिए, ठीक है ना। तो ये है दीनी सर्विस, दीनी सर्विस ये है। अच्छा इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, पीर साहब, है ना, पीर साहब तक बात आ जाए, मौली साहब से बढ़कर क्या, पीर साहब, शेख साहब, तो शेख साहब का क्या काम है? दुआएं करवाना, दुआएं करना, शेख साहब हमारे लिए दुआ कर दिएगा, पीर साहब आप हमारे लिए दुआ कर दिएगा, मेरी नौकरी के लिए, मेरे बच्चे की शादी के लिए, और मेरी जो है वो फलाने काम के लिए दुआएं कर दिएगा, ठीक है ना, वजीफे बता दिएगा, ठीक है ना, हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रही जी, वजीफे बता दीजिए, फलाने की शादी नहीं हो रही, वजीफे बता दीजिए, और फलाना जो है बीमार हो गया उसके लिए वजीफे बता दीजिए। तो ये है पीर साहब का काम। अब पीर से थोड़ा सा मॉडर्न हो जाए, शेख का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, राइट, जो अमेरिका यूरोप में भी चलता है लफ्ज शेख ज्यादा चलता है, पीर के लफ्ज से तो फिर वो जूते मारेंगे आपको, ठीक है। तो पीर के साथ जो है वो दुआएं और वजीफे, और शेख जब बन जाते हैं थोड़ा सा मॉडर्न, तो शेख साहब ने और क्या काम करना होता है जी? एक और भी काम है जो शेख साहब ने करना होता है, वो क्या जी? शेख साहब ने एक और काम करना होता है वजीफे और शेख का काम है दीन को जबरदस्ती आसान बनाना। नहीं, ये शेख का काम नहीं, वो तो फिर फायदे वाला काम हो गया। नहीं, शेख का काम होता है बयान करना, ठीक है, बयान करना, लेक्चर देना, वाज करना, ठीक है ना, ये होता है जी शेख साहब का काम। शेख साहब की लेक्चर हो रहे हैं भाई, जुमे का बयान भी हो रहा है और उसके अलावा भी इस्लाही वाज हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये जो इस्लाही वाज होते हैं, ये दिन में कितनी कितनी देर आप कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा कर लेंगे हफ्ते में, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की तो ये तालीम है ना, मतलब जो सुन्नत से मिलता है और सहाबा कराम से भी, कि हफ्ते में बस 1 दिन 2 दिन वाज, उस ज्यादा लोगों को जो है ना वो वाज का क्या, उमर रतान का काल था। तो भाई वाज जो है वो तो आप कर सकते हैं ना, मतलब हफ्ते में एक दफा आप वाज कर लें, आप चले भी मुख्तलिफ जगहों पे जा करके दिन में एक दफा किसी जगह पे, एक जगह वाज कर लिया, दूसरी जगह चले गए वहां पे दिन में एक दफा वाज कर लिया, तीसरी जगह चले गए वहां पे आपने एक दफा वाज कर लिया, तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगता ना, ठीक है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। दुआएं करने में तो वैसे ही कोई खास टाइम नहीं लगता, वजीफे बताना तो भाई आपने कहीं पे लिख करके वजीफों का एक अंबार बना लिया और हर एक को जो है वो पास ऑन करते रहे। आजकल तो इंटरनेट के ऊपर और भी आसान हो गया है वजीफे पास ऑन करना, है ना, आप रिकॉर्ड करवा दें अपनी यूट्यूब की वीडियो और वो यूट्यूब की वीडियो जो है खुद ही लोग आगे वायरल करते रहेंगे वजीफों वाली वीडियो, है ना। तो ये काम तो बहुत ही कम टाइम लेते हैं ये वाले सारे के सारे काम, है ना। जनाजा कभी कभी लोग मरते हैं उनका जनाजा पढ़ा दिया, निकाह कभी कभी लोगों का निकाह होता है, किसी किसी का कभी निकाह होता है खुशकिस्मत का है, तो फिर उसका निकाह पढ़ा दिया जाकर के, ठीक है ना। तो इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगता ना, लेकिन अगर बात इससे आगे बढ़े, लोगों की काउंसलिंग तक जा जब बात पहुंचे, काउंसलिंग, लोगों के डेली मसाइल, लोगों के जाती अहवाल, उसमें लोगों को गाइड करना, जो कि वही युज़क्कीहिम का मफहूम बनता है, युज़क्कीहिम का ये मतलब बनता है उनके जाती मामलात के अंदर उनको गलत सही का बताना। तो अब अगर आप लोगों को इंडिविजुअली डील करना शुरू कर दें, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम करते थे, नबी अलैहिस्सलाम के कितने बयान हदीस की किताबों के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर के सारी पब्लिक सामने बैठी हुई और नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, लंबे लंबे बयान कितने हैं इस तरह के, बहुत थोड़े हैं। सारी जिंदगी जो है वो जाती काउंसलिंग के अंदर गुजरी है, जाती काउंसलिंग के अंदर। और ये जाती काउंसलिंग का जो काम है ये तो एक फुल टाइम काम है, इसमें तो फिर सर खुजाने तो क्या, इसमें तो आंख बंद करने की फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि हर बंदे के अपने मसाइल हैं, हर बंदे की अपनी पर्सनल सिचुएशन है, जनरलाइज तो कर ही नहीं सकते आप किसी चीज को, राइट, जनरलाइज तो करना बयान के अंदर होता है, पर्सनल हालात को थोड़ी जनरलाइज होते हैं, वो तो हर बंदे के अपने एक पूरी की पूरी एक बेस्ट सेलर नॉवेल होती है हर बंदे की जिंदगी की, है ना। वो एक शेख ने कहा था कि अगर लोगों को लिखना आता ना, अगर लोगों को लिखना आता और वो अपने जाती अहवाल को किसी नॉवेल की शक्ल में लिख देते, एवरी पर्सन स्टोरी विल बी अ बेस्ट सेलर, एवरी पर्सन स्टोरी विल बी अ बेस्ट सेलर। और ये भी अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे को जो है वो ऐसे अहवाल अता फरमाए हैं कि उसके अंदर यानी बंदा हैरान रह जाए उनको पढ़ करके, उनको सुनकर, है ना। तो अब इसके ऊपर कोई पूछे आप करते क्या हैं, है ना, तो फिर वो उसकी वजह यही है, क्योंकि दीन में से इस वाले शोबे को बिल्कुल जो है ना वो निकाल के बाहर कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है दीन में से। अब जाहिर है वो कह रहे हैं जी अच्छा मौलवी साहब बन गए, आप आलिम में दीन बन गए, तो भाई आप जो है वो जनाजे पढ़ाते हैं, आप निकाह पढ़ाते हैं, आप जो है वो कभी कभार बयान कर देते हैं, तो ये तो कोई काम ना हुआ ना फिर, है ना, ये तो भाई कोई भी कर सकता है, ये तो कोई पार्ट टाइम, ये कोई इंजीनियर भी ये काम कर सकता है, ये कोई डॉक्टर भी ये काम कर सकता है, जनाजे पढ़ाने निकाह पढ़ाने का काम तो कोई पार्ट टाइम, आजकल तो माशाल्लाह सारे के सारे आलिम बने हुए बन रहे हैं, ऑनलाइन आलिम बन गए, वैसे आलिम बन गए, तो भी निकाह जनाजा और दो चार इसी किस्म के मसाइल बना देना, तो इसके लिए फुल टाइम तो जॉब डिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है, ये तो पार्ट टाइम भी हो सकता है सारा का सारा काम, ठीक है। लेकिन ना सिर्फ ये हमारा गलत तसव्वुर है दीन के बारे में, बल्कि इस तसव्वुर की वजह से हमें अंदाजा नहीं है कि हमारे साथ कितना, यानी कितना हम अपने साथ बुरा कर रहे हैं, ठीक है ना। हम अपने साथ, हमने इस गलत तसव्वुर के जरिए से कितना बुरा किया है, क्योंकि अब हमारे जाती अहवाल में कोई बताने वाला मिलता नहीं है, क्योंकि दीन से आपने इस शोबे को खारिज कर दिया है, राइट। किताबें पढ़ाने वाला शोबा, उसके लिए तो चले मदारिस के अंदर उलमा मिल जाएंगे कि कोई किताबें पढ़ने के लिए जाए उनके पास तो वो किताबें पढ़ा देंगे। मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनको तमाम शरूर और फितन और इनकी जो है वो जो उनकी तदबीरें चल रही हैं इन मदारिस को खत्म करने के लिए, अल्लाह ताला उन सबको नाकाम फरमा दे, तो वो काम तो फिर मदारिस के अंदर हो रहा है, राइट। लेकिन ये जो काम है, अब इस काम के ना होने की वजह से हर बंदा अपनी मन मर्जी से जो समझ में आता है बयान सुन लिया ज्यादा से ज्यादा। अब बयान में से जो समझ में आया, जो ज्यादातर हमारा तो तजुर्बा यही है कि ज्यादातर उल्टा ही समझ में आता है बयान सुनने के बाद, किताब में लिखा कुछ होता है समझ कुछ और रहे होते हैं, तो उल्टी समझ के ऊपर फिर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अब जब उम्मती जो है वो उल्टी समझ गलत समझ के ऊपर अपनी जिंदगियां गुजार रहे होंगे, तो फिर क्या उम्मत के अंदर कोई खैर आएगी? उम्मत के अंदर जो है वो फिर उसके बाद अल्लाह ताला की मदद आएगी? भाई अल्लाह ताला की मदद क्यों आएगी, कैसे आएगी? आपने तो अल्लाह के दीन को जो है वो कट ऑफ कर दिया है ना उसके अंदर से, कतअ बुर्द कर दिया है उसके अंदर से, यानी 1/4 ऑफ द दीन को आपने काट के नाउज बिल्ला अलग फेंक दिया, ठीक है ना। अब आप कहते हैं जी अल्लाह की मदद आए मेरे इस 3/4 वाले दीन के ऊपर, जो मैंने अपनी मन मर्जी से 3/4 दीन को जो है वो किसी ना किसी शक्ल में बचा के रखा हुआ है, तो अब अल्लाह ताला मेरी मदद करें इसके अंदर। भाई 3/4 भी फिर बाकी नहीं बचा असल में, जब इस 1/4 को आपने अलग कर दिया, अब इसका असर जो है ना वो बाकी 3 हिस्सों के ऊपर भी आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये जो अंबिया होते हैं, अंबिया के जो वारिस होते हैं, ये मांगते किसी से नहीं है, इनका कोई दुनियावी एम्प्लॉयर नहीं होता, इनका एम्प्लॉयर कौन होता है? अल्लाह, ठीक है ना। वहुवा खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला इनको रिस्क पहुंचाते हैं, ये अल्लाह ताला के नौकर होते हैं, अल्लाह ताला की नौकरी करते हैं। अब अल्लाह ताला का निजाम ये है, अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि वो रिस्क पहुंचाते हैं वास्तु के जरिए से, राइट, वास्तुओं के जरिए से रिस्क पहुंचाते हैं, जिस तरह से अल्लाह ताला बाकी काम वास्तुओं के जरिए से करते हैं, ठीक है ना। तो रिस्क का काम भी वास्तुओं के जरिए से करते हैं, अब अल्लाह ताला जो है कभी किसी वास्ते से कभी किसी वास्ते, ठीक है ना। तो हम इसकी परवाह ना करें कि ये खाएंगे कहां से और ये जो है ना ये करते क्या है क्या, भाई कुरान मजीद को खोल करके देख लें, समझ में आ जाएगा ये करते क्या है, ठीक है ना, और इनको रिस्क जो है वो कहां से मिलता है। हमारा तो बस ये काम है अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह आप हमें वास्ता बना दीजिए, अल्लाह आप हमें कबूल फरमा लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें ना अपने आप को कोई बड़ा समझ सकता है, ना कोई जो है वो अपनी अपनी शान के हाँ जी मैं करता हूँ ये सारा काम वगैरह, ठीक है ना। आपकी किसी को कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला जो है वो है काफी है, वो अपने बंदों से काम ले लेते हैं। وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ, ये है नबी का काम कि आप तो इन लोगों को सिरात मुस्तकीम तक पहुंचाते हैं, ये है सर्विस, दीनी सर्विस, लोगों को सिरात मुस्तकीम तक बुलाना। और इसकी तफसील जो है वो बहुत सारी, इसकी तफसील है किस तरीके से सिरात मुस्तकीम तक बुलाना, और जो टेढ़ा रास्ता है कुजी वाला रास्ता है उस कुजी वाले रास्ते से कैसे बचाना, राइट। وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ, اور بے شک وہ لوگ جو کہ آخرت کے اوپر ایمان نہیں لے کر کے آتے وہ ٹیڑھے راستے کے اوپر چلنے والے, ٹھیک ہے نا. تو ٹیڑھے راستے پہ چلنے والوں کو سیدھے راستے کے اوپر بلانا یہ بھی تو نبی کا کام ہوتا ہے. تو خلاصہ تفسیر میں فرمایا کہ ان لوگوں کی جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ حالت ہے کہ اس سیدھے راستے سے ہٹے جاتے ہیں, مطلب یہ کہ حق ہونا اور مستقیم ہونا اور نافع ہونا یہ سب مقتضیات ایمان کے جمع ہیں, ٹھیک ہے. ایمان کی جو مقتضیات ہوتی ہیں, جو ایمان تقاضا کرتا ہے نا, وہ سب یہ ہے کہ حق ہونا, مستقیم ہونا یعنی استقامت پر ہونا, نفع والا ہونا دوسروں کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور جو وجوہات مانے ہو سکتی تھیں وہ کوئی موجود نہیں ہے, यानी नबी अलैहिस्सलाम के अंदर ये सब बातें जमा हुई हुई हैं कि हक हैं, मुस्तकीम हैं, यानी नेकी पर डटे हुए हैं और लोगों के लिए फायदेमंद हैं, और जो वजूहात माने हो सकती थी वो नबी अलैहिस्सलाम के अंदर मौजूद ही नहीं है। फिर ईमान ना लाना अशद दर्जे की जहालत और जलालत। वही बात है कि इनके पास जो जो सारे एक्सक्यूजेस थे ना नबी अलैहिस्सलाम को ना मानने के, तो सारे एक्सक्यूजेस जो थे बिल्कुल नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। ठीक है, और उनकी कसावत और इनाद की ये हालत है कि जिस तरह ये लोग आयात शरईया से मुतासर नहीं होते, इसी तरह आयात कहरिया मसाइब व बलियात से भी मुतासर नहीं होते। ठीक है ना, यानी इतने हार्ड हो गए ये लोग, इतने सख्त हो गए। ठीक है, अब हमारे यहाँ ना सख्ती की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है कि अगर कोई जो है वो साबित कदमी के साथ, इस्तकामत के साथ लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और बुराई से जो है वो मुतनब्बे करे। हम कहते हैं बड़ा सख्त है, चेहरा दिखा देता है, राइट, गलतियों की जो है वो निशानदेही कर देता है, ओहो ये तो बड़े सख्त है जी। ये हमारे यहाँ सख्ती की एक डेफिनेशन है। सख्ती की दूसरी डेफिनेशन, ना मानने में सख्ती, यानी अपने चाहे कुछ हो जाए मैं ना मानू, है ना, पीछे क्लास के अंदर भी बात हो चुकी है ना, चाहे कुछ हो जाए तुम कैसे भी समझा लो मैं ना मानू। ठीक है ना, मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए मैं ना मानू, मैंने फिर भी ना टलना नहीं है अपने मौकफ से। ठीक है, तो वही फरमा रहे हैं कि ये लोग जो है ना आयात शरईया से मुतासर नहीं होते, यानी उनके सामने खोल खोल के बयान किए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है, मुतासर नहीं हो रहे, यानी असर नहीं ले रहे उसका। उसी तरह से इनके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, बलियात आ रही हैं, उससे भी मुतासर नहीं हो रहे। कैसे सख्त लोग हैं, वो मुसीबत के वक्त तबीयी तौर पर हमको पुकारते भी हैं, जैसे कि आप देख लें आज हम मुसलमान पाकिस्तानी, जैसे कि आज इस कहता है टंकी की चोट पर सारे पाकिस्तानी दीनदार हैं, है ना। इंडियन में तो फिर ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडियंस में जो है ना आपको हिंदुओं के साथ रह रह करके बहुत सारे जो हैं वो मुसलमान जो थे वो अब या तो नाउज़बिल्ला अकायद बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यहां पर जो है ना वो एक पाकिस्तान के अंदर एक 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 मेक बिलीव किस्म का एक दीनी माहौल बनाया हुआ है। मदारिस को तो एग्जेम्प्ट करते हैं ना, वो तो पक्का माशाल्लाह सही सेटअप है पूरा, लेकिन उसके अलावा अवाम उन्नास के अंदर ठीक है। तो अब ऐसा दीन का माहौल बना हुआ है माशाल्लाह, दीन की हवाएं चल रही हैं कि अब किसी के ऊपर मुसीबत भी आती है ना, अब वो कैसे ही गुनाह वाली जिंदगी गुजार रहा है। वो कहता है जी बस अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर आजमाइश भेजी है और बस थोड़े दिनों में जो है ना वो मैं इस आजमाइश में से कामयाब होकर निकलूंगा, और फिर उसके बाद जो है वो फिर बाकी सारी चीजें फिर ठीक हो जाएंगी। ठीक है ना, गुनाह से तौबा करना, अपनी गफलत से जो है वो पीछे हटना, जो नसीहत करने वाले हैं उनकी कदरदानी, उनका शुक्रिया अदा करना, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, ये तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी नसीहत करने वाले की, मुझे कोई जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी के जो तौर अतवार हैं उनको तब्दील करने की, गुनाहों को छोड़ने की, है ना। अल्लाह को पुकारूंगा, मेरे ऊपर मुसीबत आई है, मैं अल्लाह से कहूँ अल्लाह मुसीबत दूर कर दे, है ना, और वो दूर कर देगा मेरी मुसीबत। और बेशक होता भी ऐसा ही है, जब ऐसे लोग अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करना चाहते ना, ढील मिलती है फिर उसके बाद और उनकी मुसीबत दूर हो जाती है। ये मुसीबत का दूर होना बगैर इस्लाह के, मुसीबत का दूर हो जाना ये सिर्फ ढील होती है, ये इस्तिदराज होता है जिसके बारे में हम आयात पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, लेकिन नहीं मानते इस बात को, यही मामला इन लोगों का भी था। ठीक है, कि इसी तरह आयात कहरिया मसाइब व बलियात से मुतासर होते, गो मुसीबत के वक्त तबीयी तौर पर हमको पुकारते भी हैं, लेकिन वो दफ़उल वक्ती होती है, यानी वक्ती तौर पर जो है ना वो एक मुसीबत को दफा करने के एक तदबीर होती है। चुनाचे अगर हम उन पर मेहरबानी फरमा दें और उन पर जो तकलीफ है उसको हम दूर भी कर दें, तो वो लोग फिर अपनी गुमराही में भटकते हुए इसरार करते रहें। ठीक है, शरीयत की पाबंदी ये नहीं करनी बस। ठीक है, और वो कौल व करार जो मुसीबत में किए थे सब खत्म हो जाए। कौल ही ताला इजा मसल इंसान गुरु दाना, कि जब इंसान को छूती है कोई मुश्किल मुसीबत हमें पुकारता है। ठीक है ना, और कौल ही ताला कौलू ताला इजा रुकिबू फिलफुल की, वही जो आयत कि जब इनकी कश्ती जो है ना वो मंझदार में फंस जाती है ना तो ये हमें पुकारते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर जब इनकी कश्ती जो है वो मदार से हम निकाल लेते हैं, मंझदार से हम निकाल लेते हैं, तो फिर ये शिर्क करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मामला नहीं होता। ठीक है ना, साजिद ने मुस्तकल एक बयान अभी किया था रमजान मुबारक से गालिबन पिछले ही जुम्मे को या उससे शायद एक जुम्मा पहले, कि मुसीबत के ऊपर जो दुआ मांगने का तरीका है ना वो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सिखा दिया है। अल्लाह से दुआ मांगना उसका भी एक तरीका है, वो तरीका ये नहीं है ऐ अल्लाह मेरी मुसीबत दूर कर दे, अल्लाह मेरी मुसीबत दूर कर दे, बड़ा आपके ऊपर भाजी अल्लाह के ऊपर बड़ा ईमान है और जी हाँ वाकई अल्लाह ताला को मुसीबत दूर करने वाला मानते हैं तो इस वजह से अल्लाह मुसीबत दूर कर दे। भाई ये जो मुसीबत दूर करने का तरीका है ना इसमें एक चीज बड़ी फंडामेंटल मिसिंग है, बड़ी फंडामेंटल बुनियादी बात इसके अंदर मिस हो जाती है, वो गलत, वो हमसे गलती हो जाती है। वो क्या कि भाई पहले हम इस बात को सोच लें अपने जहन में कि मेरे ऊपर जो मुसीबत आई है ये मेरे गुनाह के वजह से आई है, मेरे गुनाह की वजह से, किसी और के गुनाह की वजह से नहीं आई, किसी और की ज्यादती और जुल्म की वजह से मेरे ऊपर मुसीबत नहीं आई, बल्कि मेरे अपने गुनाह की वजह से ये मुसीबत आई है। फिर उस गुनाह से अल्लाह ताला से, गुनाह पर अल्लाह ताला से माफी मांगना, ठीक है ना, अल्लाह ताला से माफी मांगना और फिर उसके बाद मुसीबत दूर करने की दुआ करना, यह है तरतीब मुसीबत पर दुआ मांगने की। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, है ना, आदम और अम्मा हव्वा की जो दुआ है अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं हमें सिखा दी ना, है ना, अपने मुकर्रब बंदों और बंदी और इतना जन्नती और उनको जो है वो अल्लाह ताला ने मुसीबत में जब मुब्तला किया तो भाई ऐसे ही कोने कुदरे में उनका मसला चुका देते, सारी सारी इंसानियत को बताने की क्या जरूरत कि उनके साथ ये हुआ फिर ये हुआ फिर उन्होंने ऐसे दुआ मांगी फिर मैंने उनके ऊपर जो मेहरबानी फरमा दी, कोई वजह थी ना कि अल्लाह ताला ने इतनी तफसील हमारे सामने खोली, वरना तो हम तो दुआएं करते हैं भाई ऐ अल्लाह हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा, हमारे ऐबों को दूसरों के ऊपर ना खोलिए, हमारी गलतियों को दूसरों के ऊपर ना खोलिए, पर्दा पोशी फरमा दीजिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अपने मुकर्रब तरीन बंदों की जो है नाउज़ बिल्ला एक तरीके से यही लगता है ना जैसे कि पर्दा दरी कर रहे हैं, खोल के लोगों को बता रहे हैं कि इसने ये कर लिया था फिर उसके साथ ये हो गया था फिर उसने ऐसे दुआ मांगी, भाई क्यों कर रहे हैं सब कुछ, हमारे सीखने के लिए नहीं कर रहे, हमारी हिदायत के लिए नहीं कर रहे तो और किस लिए कर रहे हैं फिर ना। ठीक है, और हम जो है वो उनके तरीके को सीखने के बजाय जो है वो अपने तौर पर अल्लाह ताला को अहकाम हुक्म लगाते हैं, अल्लाह ताला को मुसीबत दूर कर दीजिए मेरी, नहीं की तो मैं आपसे रूठ जाऊंगा, मैं आपको छोड़ के किसी और जगह चला जाऊंगा, है ना, यू बेटर रिमूव माय ट्रिब्यूलेशन। ठीक है ना, बल्कि चूंकि अल्लाह के साथ हमारा यही एटीट्यूड है तो है ना कभी अल्लाह वालों से दुआएं करवाते हैं ना तो वो भी हमारा ऐसे ही एटीट्यूड होता है ना, जो लसूड़े की तरह चिपक जाते हैं उनके साथ, है ना, बहुत ही यानी उनके इतना जिच कर देते हैं बंदे को, दुआ करवा के छोड़ूंगा मैं तो आपसे जो है ना उस आपके हलक में उंगली डाल करके जो है ना वो दुआ खींच के बाहर निकालूंगा अपने लिए, नहीं किया आपने तो आप भी जो है ना वो याद करेंगे कि हाँ इसने मुझसे दुआ करवाई थी। भाई ये तरीका है दुआ करवाने का, इसमें आजिजी है, इसमें इनके सारी है, नहीं ये तो यानी आप बुलडोज कर रहे हैं किसी बंदे को दुआ करने के, राइट, तो हम अल्लाह के बंदों को भी बुलडोज करने की कोशिश करते हैं और नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला हम अल्लाह ताला को जो है ना वो बुलडोज करने की कि मैंने मेरा मसला हल कर दीजिए आप, बस कर दीजिए जल्दी से, ठीक है ना। ये तरीका नहीं है भाई, अल्लाह ताला के सामने आजिजी चलती है, जोर नहीं चलता अल्लाह ताला के सामने ना। तो ये लोग जो दुआ करते थे ना, इनकी दुआ की यही हकीकत होती थी, मैं बस मुसीबत आ गई अब तो दूर कर दे मैं हमारी मुसीबत को। और शायद इसका ये है कि शायद इसका ये है कि बाद औकात हमने उनको गिरफ्तार अजाब भी किया है, सो उन लोगों ने ना अपने रब के सामने पूरे तौर पर फरोतनी की और ना आज इख्तियार। देख क्या फरमा रहे हैं, ठीक है कि वलकद अखजनाहुम बिल अजाबी फमा इस्तकानू लिरब्बिहिम, नहीं करी इन्होंने आजजी अपने रब के सामने। भाई आजजी क्या होती है रब के सामने, ए अल्लाह मुझसे गलती हो गई आप माफ कर दीजिए, ये आजजी होती है। गलती का इदराक, गलती का एहसास, एडमिटिंग योर मिस्टेक्स, ये होती है आजजी। मीन 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 करके बात करना और जो है वो उल्टे कदमों चलना और जो है वो सर को जो है वो झुका लेना और कंधों को जो है वो नीचे कर लेना, ये तो जाहिरी आजजी होती है। और जिसको दिलों का हाल पता हो ना तो उसको उसके सामने इस आजजी की कोई हैसियत ही कोई नहीं होती, राइट। हकीकी आजजी तो ये होती है कि नादिम और शर्मिंदा हो अपनी गलती के ऊपर, जिसकी वजह से आपके ऊपर ये मुसीबत आई है, ठीक है। इन्होंने ये काम नहीं किया, फरोतनी का मतलब भी वही इनके सारी तवाजो वगैरह, ठीक है। तो ये करना है हमें, ठीक है ना, अल्लाह को राजी करने का यही एक तरीका तरीका है। किसी ने सवाल लिखा था कि अस्सलाम वालेकुम, मैं मकाफात अमल के बारे में पूछना चाहती हूँ कि ये क्या है, लोगों से अक्सर सुना है कि। अच्छा ये जी, कल का आपका सवाल है जो आपने डायरेक्टली भेजा था, कास्ट में भेजने के लिए आपको कहा था, तो उसको बस ये अभी पैराग्राफ पढ़ के फिर इसको एड्रेस करते हैं। अच्छा किसी और ने डायरेक्ट मैसेज में सवाल भेजा है कि, एक मिनट, पता कैसे चलेगा कि मुसीबत आजमाइश है या गलत अमल का नतीजा है? पता कैसे चलेगा कि मुसीबत आजमाइश है या गलत अमल का नतीजा है? देखें, थ्योरेटिकल आंसर जो है ना वो इस बात का ये है कि मुसीबत गलत अमल की सजा है, ठीक है, या आजमाइश है। मसला ये है कि इसका जो थियोरेटिकल जवाब है ना, वो जो कि किताबों में लिखा हुआ भी है और वो बहुत ज्यादा लोग लोग जो है ना उसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ना, यानी जो जो प्रैक्टिकल जवाब है ना, प्रैक्टिकल जवाब, ठीक है, और जिससे कि आप फिर कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे, वो यही है कि ये आपको खुद नहीं पता चल सकता, ये आपको खुद नहीं पता चल सकता। यानी कोई लिटमस टेस्ट नहीं है कि आपने जो है लिटमस पेपर जो है वो मुसीबत के अंदर डाला, अब उसकी कलर अगर रेड हो गया ना तो इसका मतलब ये है कि आजमाइश थी, ठीक है ना, और अगर उसका कलर जो है वो ब्लू हो गया ना तो इसका मतलब ये है कि ये आजाब था। आपका तो वैसे भी सवाल भी थोड़ा सा जरा अल्फाज भी ठीक नहीं है आपके सवाल, ठीक है ना। आपका सवाल ये होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल है आप यही पूछना चाह रही थी, कि ये जो है वो दरजात बुलंद करने के लिए मुसीबत आई है या ये अजाब के तौर पर मुसीबत आई है, ये होता है सवाल, ठीक है ना। आपका सवाल ही जरा सा, यानी इट टेल्स कि आपका कॉन्सेप्ट ही जरा क्लियर नहीं, ठीक है। तो सवाल ये होता है कि मुसीबत ये जो आई है हमारे ऊपर, ये दरजात बुलंद करने के लिए आई है या ये अजाब के तौर पर आई है, ठीक है ना। तो इसका जवाब जो है ना वो इतना उसके अंदर डिटेल है कि कोई लेमैन या कोई कम इल्म रखने वाला, कम तकवा और कम यानी जिसका है ना मसला, वो जो है ना वो किताब पढ़ के कोई जवाब जो है ना उसको उसने गलत ही लेके जाना है, गलत ही इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो इसका जवाब जो है ना वो एक ही है, आईना। आईने के बगैर ये पता नहीं चल सकता, ठीक है। जब तक इंसान की जिंदगी में आईना ना हो ना, यानी कोई ऐसा शख्स जो के खैर ख्वाह भी हो, जो के सही अकीदे वाला भी हो, ठीक है ना, और जो के आपके अहवाल से वाकिफ भी हो, वो शख्स आपको बता सकता है कि ये जो आपके ऊपर मुसीबत आई है ये अजाब है कि ये दरजात की बुलंदी के लिए आई, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ आईना ये काम कर सकता है, उसके अलावा ये काम नहीं हो सकता। आप बंदा खुद ये काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं कर सकता? उसकी वजह इल्म की कमी, ठीक है ना, दूसरी वजह शैतान और नफ्स का इन्फ्लुएंस इंसान के ऊपर, ठीक है ना। तो ये इतना ज्यादा जो हमारी जो जो नुक्स है ना हमारे अंदर, शैतान का इन्फ्लुएंस भी है, नफ्स भी हमारे साथ जो है वो हमारा लगा हुआ है, और इल्म भी जो है वो हमारा बहुत ही महदूद है। तो इन सारी कमियों की वजह से जो है ना, वी आर नॉट केपेबल ऑफ डायग्नोसिंग फॉर आवर सेल्व्स, वी आर नॉट केपेबल, ठीक है। तो यही है। अच्छा, तो अब ये जो खत्म करना है कि बस जब ऐन मुसीबत में, और मुसीबत भी ऐसी सख्त जिसको अजाब कहा जा सके, जैसे कहत जो मक्का में, मक्का मुकरमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से हुआ था, उन्होंने आजजी इख्तियार नहीं की, तो बाद जवाले मुसीबत के तो बदरजाए ऊला उनसे इसकी तवक्को नहीं है, मगर उनकी ये सारी बेपरवाही व बेबाकी उन मसाइब तक है जिनके आदि हो चुके हैं, यहाँ तक कि हम जब उन पर सख्त, यानी उन मसाइब तक है जिनके ये आदि हो चुके हैं, यानी ये जो बेपरवाही कर रहे हैं ना, तो कहत के ऊपर ये बेपरवाही कर रहे हैं, क्योंकि जब इंसानों पर कहत पड़ता है तो वो कोई ना कोई जो है ना वो ऑल्टरनेट रास्ता बना लेते हैं, है ना, एड आ जाती है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस काम करना शुरू कर देती हैं, और जो है वो जो अमीर कबीर लोग होते हैं वो वैसे भी जो है वो या तो माइग्रेट कर जाते हैं वहां से, राइट, या कोई और ऑल्टरनेटिव सोर्स जो है वो बना लेते हैं। तो इस कहत वगैरह टाइप के जो दुनियावी अजाब होते हैं ना, तो इनके तो इंसान जो है वो किसी हद तक जो है वो आदी भी हो जाते हैं, लेकिन बस इससे आगे नहीं। यहां तक कि हम जब उन पर सख्त अजाब का दरवाजा खोल देंगे, ठीक है, हत्ता इजा फतहना अलैहिम बाबन जा अजाबिन शदीद, ठीक है ना, सख्त अजाब का जब इनके ऊपर दरवाजा खुल जाएगा ना, जो कि फौकुल आदत हो, ठीक है, यानी इन आम ये जो कहत वगैरह वाले अजाब होते हैं ना, ये तो दुनियावी यानी असबाब के तहत होते हैं, ठीक है, और एक अजाब वो होता है जो कि दुनियावी असबाब से माफ़ूक अजाब हो, जैसे कि कौम आद समूद वगैरह के ऊपर जैसा अजाब आया, ठीक है, कि कोई गैबी कहर आ पड़े, ठीक है, यानी जैसे फरिश्ता आया और जमीन को ही जो है वो उखाड़ करके ऊपर ले गया और फिर जमीन को पलट के फेंक दिया नीचे, कौम लूत के ऊपर जैसे अजाब आया, तो ये जो है ना ये मा या फौकुल आदत किस्म का सवाल का अजाब है, ठीक है ना, ये नॉर्मली दुनिया में ऐसी चीजें नहीं होती है ना। तो ऐसा कोई अजाब आप पढ़े ना, तो अब उसके ऊपर यू कैन नॉट डील विद दिस अजाब, यू कैन नॉट बिकम, यानी आप इसके लिए कोई, फिर अब आप कोई तदबीर नहीं कर सकते इस अजाब से बचने के लिए ना, ठीक है, या बादल मौत, या ये कि मौत ही आ जाए, और मौत के बाद जो अजाब शुरू होगा तो वो भी असबाब के दर्जे, यानी असबाब से नहीं निपटा जा सकता मौत वाले अजाब के साथ में, तो उस वक्त बिल्कुल हैरत ज़दा रहेगा कि ये क्या हो गया, और सब नशा हिरन हो जाएगा, यानी जिस तरह हिरन भाग जाता है ना, उसी तरह इनका जो ये गुरूर का नशा है ना वो इनके पास से भाग जाएगा, ठीक है। तो हमारे ऊपर भी जो दुनिया के अंदर ये छोटे छोटे अजाब आते रहते हैं ना, तो हमें अपने गुनाहों से तौबा करके, ठीक है ना, फिर अल्लाह ताला से इल्तिजा करनी होती है कि ऐ अल्लाह मेरी मुसीबत को दूर कर दीजिए। ये होता है आजजी के साथ यानी मुसीबत के टालने की दुआ करना, ठीक है, और जब हम इस तरह नहीं करते, या तो हम बिल्कुल ही अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करते, ठीक है ना, जैसे एक मटीरियलिस्ट बिल्कुल ही नॉन रिलीजियस किस्म का दुनियादार इंसान, नहीं जी ये तो बस एक एक मटेरियल रियलिटी है दुनिया में, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, हमारे ऊपर भी कुछ हो गया, इसका कोई ताल्लुक जो है वो बनाने वाले के साथ है ही नहीं, अल्लाह ताला के किसी के साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो वो तो बिल्कुल ही अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता। यानी एथियस्ट टाइप के जो लोग होते हैं, कॉम्युनिस्ट, एथियस्ट, मटीरियलिस्ट, ऐसे लोग, राइट। और दूसरी टाइप के लोग कौन होते हैं, जो कि नबियों के दुश्मन होते हैं, यानी मुसलिह, राइट, नसीहत करने वालों के साथ जिनको बुग्ज होता है ना, ठीक है ना, जैसे आज हमारी हालत ये हुई है। हम एथियस नहीं है, हम जो है ना वो बेसिकली उलमा और नासिहीन के दुश्मन, ये है, हाँ ये है हमारी डेफिनेशन, ठीक है। तो अब ये शख्स कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये शख्स जो है ना वो गुनाह से तौबा नहीं करता, क्योंकि गुनाह की इंडिकेशन तो वो मुसले कर रहा था इसको। अब अगर ये गुनाह से तौबा करेगा तो गोया कि इसने उस मुसले की बात मान ली, ये तो जो है वो इसके लिए एक हार हो जाएगी, ये तो इसकी हार हो जाएगी, राइट। तो ये ना मानना, अब ये अल्लाह से दुआ भी कर रहा है ना, मी एंड माई लॉर्ड, मी एंड माई गॉड, राइट, मैं और मेरा अल्लाह जो है ना, बस हमारा आपस में ऐसा जबरदस्त रिश्ता है, मैं अल्लाह से जो है वो मांगूंगा, दुआ करूंगा, और अल्लाह जो है वो सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज मोर डेंजरस, ठीक है, क्योंकि ऐसा शख्स जो है ना वो बिल्कुल भी अपने आप को गलत नहीं समझ रहा होता, बहुत ही अपने आप को मुकर्रब और परहेजगार और दीनदार और सब कुछ समझ रहा होता है, और अल्लाह ताला की निशानियों को बिल्कुल जो है ना वो इग्नोर कर रहा होता है। तो ये जो सवाल पूछा था किसी ने, उसको अभी हम बस एड्रेस करके क्लास खत्म कर देते हैं, कि मकाफात अमल के बारे में पूछना चाहती हूँ कि ये क्या है। लोगों से अक्सर सुना है कि फुला बंदे ने बुरा किया था तो उसके साथ भी बुरा हुआ, ये बात मुझे समझ में आती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि माँ बाप ने बुरा किया तो औलाद के सामने आया, तो ऐसे किसी की सजा किसी और को कैसे अल्लाह ताला दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इन इनका सवाल जो मुझे समझ में आया वो ये है कि भाई बंदा खुद बुरा करे तो उसको उसकी सजा मिले, तो ये तो समझ में आता है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि जी क्योंकि इसने किया था तो इस वजह से इसकी औलाद को इसकी सजा मिल रही है, तो भाई ये कैसे है ना, बाप माँ की गुनाह की सजा जो है वो औलाद को कैसे मिल रही है, क्यों मिल रही है, ठीक है ना। तो ये समझ में नहीं आता, बड़ा अच्छा सवाल है, इल्मी नौयत का भी सवाल इसको इसको कहा जाएगा, ठीक है, तालिब इल्माना सवाल कहते हैं ऐसे सवाल को। तो इसका जवाब ये बनेगा कि देखें, ये जो उसूल है ना, ये कुरान मजीद में ये उसूल है, ठीक है ना, ये खाली ये नहीं कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, बल्कि अल्लाह ताला ने ये बात बताई है, वला तजिरु वाजिरतु विजरा उखरा, कि कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, ठीक है, कि गुनाह किसी ने किया था और उसका अजाब जो है वो किसी कोई और अपने सर ले ले, ठीक है ना, कि भाई मैं तुम्हारा अजाब बांटूंगा, मैं तुम्हारा तुम्हारे गुनाह का जो जो, जो सजा है ना वो मैं ले लूंगा, नहीं, कोई किसी का गुना का अजाब नहीं ले सकता, किसी का बोझ नहीं बांट सकता, इस तरीके से जब, वरना ये वो दुनियावी बोझ बांटने की बात नहीं हो रही कि कोई जो है वो खूब सारा सौदा लेके जा रहा था, तो अब अल्लाह ताला नाउज़ बिल्ला मना कर रहे हैं कि तुम जो है वो उसके हाथ से लेकर के सौदे की थैलियां तुम लेकर के उठाना ना शुरू कर दो, वला तजिरु वाजिरा तुम वजरा उखरा, ये कोई थोड़ी इसका का मतलब है, बल्कि उसके तो हमें तलकीन की गई है, लोगों का बोझ बांटो, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे कौन से वाले बोझ की बात हो रही है, यहाँ पे गुनाहों के बोझ की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कोई किसी का बोझ ले नहीं सकता, तो भाई इसका ये भी नतीजा निकलता है कि अल्लाह ताला भी किसी के गुनाह का बोझ किसी दूसरे के ऊपर नहीं डालते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है, या बजाहिर ऐसा नजर क्यों आता है कि माँ बाप ने गुनाह किए थे तो औलाद उसको झेल रही है, ठीक है ना। और अक्सर जो है वो यानी सुनने को मिलता है, सिर्फ अवामुन नास से सुनने को नहीं मिलता, बल्कि बड़ों से कभी 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 सुनने को मिल जाता है इस तरह की बात, जिसकी वजह से कभी कभी जो है वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि बात की समझ पूरी नहीं होती, ठीक है ना, और कम इल्मी की वजह से गलत फहमी में मुबतला हो जाते हैं। तो होता यह है कि जी इस दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला ने हमें भेजा है ना, ये दुनिया की जिंदगी जो है ना, ये है पूरी की पूरी इम्तिहान, पूरी की पूरी आजमाइश है, ठीक है ना। यहां पर याद रखना है हमें कि यहां पर जो इनाम मिलता है ना, इनाम यानी नेकी करी, इनाम मिल गया, ठीक है ना। आपने नेकी करी, आपको जो है वो यानी इज्जत मिल गई, ठीक है ना। याद रखना है कि इस दुनिया के अंदर जो इनाम मिलता है ना, इस दुनिया की नेचर उस इनाम पर भी गालिब आ जाती है। क्या है इस दुनिया की जिंदगी की नेचर? इम्तिहान, आजमाइश, टेस्ट, ये है इस दुनिया की जिंदगी की नेचर। अब ये इतनी गालिब है कि इनाम के ऊपर भी ये गालिब आकर के इनाम को भी ये आजमाइश में कन्वर्ट कर देती है, इनाम को भी ये आजमाइश में कन्वर्ट कर देती है। क्या मतलब? नेकी करी, इज्जत मिली, राइट। अच्छा, ये इज्जत जो मिलती है ये सिर्फ अब्बा को तो नहीं मिलती जिन्होंने नेकी की जिंदगी गुजारी थी, ये इज्जत तो साहिबजादा साहब को भी मिलती है ना, मिलती है कि नहीं मिलती जी? ये हजरत जी के बेटे हैं, ये साहिबजादा साहब हैं, उनके लिए भी दुआएं हो रही हैं, उनके लिए भी जो है वो माशाल्लाह लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, लोग जो है वो इतनी इज्जत कर रहे हैं, तो साहिबजादा साहब को भी पीर साहब की नेकी की वजह से इनाम मिला। तो अब ये साहिबजादा साहब को इनाम मिल रहा है, क्या ख्याल है? नेकी उन्होंने करी थी या उनके अब्बा ने करी थी? हाँ, साहिबजादा साहब ने ये तो काम किया कि वो अब्बा के मुखालिफ नहीं बने। अगर मुखालिफ बनते तो फिर तो दुनिया वाले भी थू थू करते उनके ऊपर, है ना। ये तो बाप के दीन पर ही नहीं है, ये तो बाप के जो है वो मुखालिफ मुखालफत में चला गया है, ठीक है ना। लेकिन अगर मुखालफत नहीं करी बस, इज्जत फिर भी मिलेगी। ये तो नहीं कि साहिबजादा साहब भी उतना ही दीन का काम करेंगे, उतना ही जो है वो जिक्र मुराद में करेंगे, उतना ही इबादतें करेंगे, उतना ही जो है वो कुर्बानियां देंगे, सब उनको इज्जत मिलेगी? नहीं, उनको तो बस साहिबजादा होने की वजह से इज्जत मिल रही है। तो अब ये इज्जत जो है ये क्या है उनके लिए जी? इसका जवाब अगर दे दें तो आपको बाकी सवाल का जवाब भी मिल जाएगा जी। तो साहिबजादा साहब को जो इज्जत मिल रही है, माशाल्लाह, हम अपने हजरत के साहिबजादा की बात नहीं कर रहे, वो तो माशाल्लाह हम जानते हैं उनको पर्सनली, बहुत नेक और बहुत, लेकिन जब वो छोटे ही थे तब भी इज्जत मिलती थी, जब उन्होंने ये सारे काम नहीं किए थे नेकी वाले, ठीक है ना। तो अब उनको जो ये इज्जत मिल रही है अब्बा की वजह से, तो ये क्या है उनके लिए? ये इम्तिहान, ये इनाम मिल जाता है उनको नेकी का। बात तो समझ में नहीं है आपके लगता है अभी तक, ठीक है। ये तो साहिबजादा साहब के लिए टेस्ट है ना, ये साहिबजादा साहब का इम्तिहान है कि अब्बा की वजह से जो मुझे इज्जत मिल रही है, अब इस इज्जत को मैं जो हूं वो क्या करूं? मैं इस इज्जत की बुनियाद पर अब मैं जो हूं वो यानी हवा में उड़ना शुरू हो जाऊं, राइट। मैं इस इज्जत की वजह से जो है वो अपने आप को कुछ समझना शुरू हो जाऊं, या ये कि मैं इस इज्जत के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं और मैं भी नेक बनूं, मैं भी नेकी के काम करूं। तो ये टेस्ट हुआ ना उनके लिए, जो अब्बा की नेकी का की वजह से इनाम बेटे को मिल रहा है, ये बेटे के लिए आजमाइश है, ये बेटे के लिए इनाम नहीं है बल्कि आजमाइश है। यानी इनाम तो था लेकिन वो इनाम आजमाइश में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि दुनिया की जिंदगी आजमाइश है, ठीक है। ख्वातीन के आ रही है समझ? ये बेटे के लिए आजमाइश, ठीक है ना। बिल्कुल यही मामला दूसरी साइड पर भी है। अब्बा की बुराइयां थी, ठीक है ना, अम्मा की बुराइयां थी, तो अब बेटे बेटी की जिंदगी के अंदर भी मुसीबतें आई, ठीक है ना, क्योंकि बाप का अमल उसका असर जो है वो औलाद पे पड़ता है, माँ का अमल असर औलाद पे पड़ता है, ठीक है ना। जिस तरह भाई नेकी का असर औलाद पे पड़ा ना, इज्जतें मिली ना औलाद को, उसी तरीके से बुराइयों का असर औलाद पे पड़ा, ठीक है ना। तो अब ये औलाद के लिए सजा है भाई, जाहिरी शक्ल तो सजा की ही है, लेकिन इसी दुनिया में है ना भी वो औलाद, इसी दुनिया की जिंदगी में रह रही है ना। तो इस दुनिया की हकीकत क्या है? सजा इस दुनिया की हकीकत नहीं है, इस दुनिया की हकीकत आजमाइश है, ठीक है ना, आजमाइश है। तो इस वजह से औलाद के ऊपर जो मुसीबत आ रही है ये औलाद की आजमाइश है, जिस तरह साहिब दादा साहब की वो आजमाइश थी, उसी तरीके से इन जो है वो उनके लिए जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें, राइट, उनके लिए ये आजमाइश है, ठीक है ना। अब इस आजमाइश के ऊपर इन्होंने पूरा उतरना है। कैसे उतरना होता है भाई मुसीबत वाली आजमाइश के ऊपर? सबर करना होता है, ठीक है ना, इस्तकामत, नेकी के ऊपर इस्तकामत, गुनाहों से बचना। जैसे साहिबजादा साहब को नेकी पर इस्तकामत, गुनाहों से बचना था, उसी तरीके से इन नेगेटिव साहिबजादा साहिब जो है, मनफी साहिबजादा साहिब जो है, उनको भी सबर करना है, इस्तकामत नेकी के ऊपर, गुनाहों से बचना, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ना जाहिरी शक्ल ऐसी बनती है कि जैसे कि उनको सजा मिल रही है अब्बा की वजह से, और इनको जो है वो इनाम मिल रहा है अब्बा की वजह से, लेकिन ये इनाम और सजा, ये हकीकी इनाम और सजा नहीं होता, बल्कि ये भी आजमाइश ही होती है, ठीक है ना। अल्लाह ताला किसी को दे के आजमाते हैं, अल्लाह ताला किसी से ले के आजमाते हैं, किसी को इज्जतें दे के आजमाते हैं, किसी को से जो है वो कुछ जिल्लतें दे के भी आजमाते हैं। कल नबी कल माशाल्लाह इतना जबरदस्त हदीसें सुनाई हैं शेखुल हदीस साहब ने, हजरत जी का बयान आपने सुना होगा, हजरत जी तो अल्लाह ताला शिफाए कामिला आजल मुस्तमिर अता फरमाए, बयान नहीं फरमा सके, शेखुल हदीस साहब ने बयान फरमाया, ठीक है ना। तो उसके अंदर एक वाकया बयान किया था ना, बुखारी शरीफ की हदीस थी ना, कि एक माँ जो है वो अपने बेबी को जो है दूध पिला रही थी, और एकदम से शोर हुआ और लोग गुजर रहे हैं, और एक औरत को जो है वो मार रहे हैं ना, उसको मार रहे हैं, उसका जो है वो बाल नोच रहे हैं उसको इस तरीके से। तो उस औरत ने सवाल किया, उस औरत ने दुआ करी, ए अल्लाह मेरे बच्चे को उस जैसा ना बनाना, ठीक है। बच्चे ने, दूध पीते बच्चे ने देखा और कहने लगा, ए अल्लाह मुझे इस जैसा बना देना, ठीक है। तो अब माँ ने पूछा, आप ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, दूध पीछे पीते, ये अल्लाह का मौजजा था, ये यानी ये करामत थी बेसिकली, ठीक है। तो बच्चे ने कहा कि ये जो औरत है जिसको के लोग जानिया समझ रहे हैं और इतना उसकी हतक कर रहे हैं, असल में तो ये अल्लाह की मुकर्रब और पाकदामन औरत है, ठीक है ना, लेकिन दुनियावी तौर पर जिल्लत और रुसवाई मिल रही है उसको, लेकिन अल्लाह क्या उसका बहुत बड़ा मुकाम है, ठीक है। तो यही मामला है, ठीक है। हाँ, ये जो औलाद के ऊपर जो अहवाल आते हैं ना, ये जो सजा होती है ना, ये औलाद के लिए सजा नहीं होती, बाप की मां की गलती की वजह से औलाद के ऊपर जो बुरे हाल आ रहे हैं, ये औलाद के लिए सजा नहीं है, ये औलाद के लिए आजमाइश है पूरी की पूरी। अगर औलाद ने खुद गुनाह नहीं किया तो ये उसके लिए पूरी की पूरी आजमाइश है, लेकिन बाप और मां के लिए ये सजा भी है, क्योंकि जब औलाद के ऊपर मुश्किल हालात आते हैं तो बाप और माँ के दिल को बहुत रंज और अलम मिलता है, बहुत तकलीफ मिलती है। तो ये रंज और अलम जो है, ये उनके गुनाहों की उनको सजा मिल रही है, जो कि छोटी सजा दुनिया के अंदर मिलती है, ठीक है। औलाद को खुश देखकर वालिदैन को सबसे ज्यादा खुशी होती है, औलाद को दुखी देखकर वालिदैन को उससे ज्यादा तकलीफ होती है। जी बिल्कुल, तो ये वालिदैन के लिए खुशी, ये वालिदैन को जजा मिल रही है कि जी उनके बेटे को इज्जत दी है अल्लाह ताला ने, और जो उनके बेटे को जो है वो सजा मिल रही है, तो वालिदैन को दुख, तो ये उनके गुनाहों की मजीद सजा होती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्लास खत्म करते हैं, वाखिर दुआ। Is it better for us to think that it is because of our guna, regardless of whether or not it is azmaish or azab, since this is what will benefit us more for our tarbiyat? Ji, isi wajah se Sajid ne kaha tha ki maloom karne ke liye kisi sheikh se, kisi aaine se poochna zaruri hai. Khud humne hamesha yahi sochna hai ki mere upar jo musibat aayi hai wo mere guna ki wajah se. ये तो हमने सोचना ही नहीं है कि मेरे ऊपर जो मुसीबत आई है, हम खुद से अज्यूम करके बैठ जाएं कि ये मेरे दर्जात बुलंद करने के लिए आई है, नहीं, ये तो तकब्बर और उजब बन जाएगा ना, ये तो हमने सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। लेट समवन एल्स टेल अस दैट इंस्टेड ऑफ आवरसेल्व्स डिसाइडिंग दिस फॉर अस, ठीक है, कि ये मेरा दर्जात बुलंद हो रहे हैं और इस वजह से सारा, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। वापस दावा।